ठाकुर जी गुरुदेव के चरणों में वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं एवं परिवार, हम जिस युग में जी रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का युग है, ये साइंस का युग है। यहां पर कोई भी वस्तु या व्यक्ति उसको उसका फंक्शन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को आप देखिए, उसको ऑपरेट करेंगे तो उसमें पावर चाहिए। जैसे आप अपने घर में कार रखते हैं तो कार ड्राइव करने के लिए आपको क्या चाहिए? गैस चाहिए। फ्लाइट को, एरोप्लेन को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आपके घर में खाना बनाना है तो उसके लिए गैस की आवश्यकता होती है। बस को चलाने के लिए, ट्रेन को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। तो जितने भी ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये जितने भी अजीव निर्जीव जड़ वस्तुएं हैं, उनको चलाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए, उनका फंक्शन करने के लिए आपको पावर की जरूरत होती है। न केवल नॉन लिविंग बींग्स, बल्कि जो अपने लिविंग बींग्स हैं, जो हम प्राणी हैं, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय प्राणी, उनको भी क्या है? एनर्जी की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है। बिना पावर के कुछ भी नहीं हो सकता है। आप देखिए, एक दिन अगर बिजली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो आप देखिए कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। ये जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, या आप अपने घर को देख लीजिए, फैक्ट्रीज की बात छोड़िए, वो तो बड़े बड़े लोगों की बात है, लेकिन आप अपने घर को भी अच्छी तरह से अगर 2 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई, या 1 दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो आप देखिए सारे काम ठप हो जाते हैं। क्योंकि सारे वर्क सुबह से लेकर शाम तक जितने काम हो रहे हैं, वो सब उसके पीछे एक बहुत बड़ा पावर, एक बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। बिना पावर के कुछ भी नहीं हो सकता। हम जैसे मनुष्य हैं, जो लिविंग बींग है, चाहे वो 1 सेंस ऑर्गेन वाला हो, चाहे 5 सेंस ऑर्गेन वाला हो, जैसे आप आंखों से देखते हैं, तो आंखों से देखते हैं तो उसमें भी क्या पावर चाहिए? बिना पावर के आप आंखों से देख नहीं सकते। जैसे डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के पास आंखें हैं, कान भी है, नाक भी है, पूरी बॉडी उसके सामने देखते हैं हम, कि डेड बॉडी जब हम देखते हैं तो उसके सब कुछ है, लेकिन बिना पावर के न वो देख सकती है, न वो सुन सकती है, न वो सूंघ सकती है, न वो टेस्ट महसूस कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। तो आप देखिए, हर लिविंग बींग को भी अपनी जीवन गाड़ी चलाने के लिए एक पावर की आवश्यकता होती है। पावर की आवश्यकता होती है, बिना पावर के कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब प्रश्न है कि आखिर वो पावर है क्या, जो हम अपना जीवन चला रहे हैं। हमारा जो ये जीवन चल रहा है, इस जीवन के पीछे ऐसा कौन सा पावर है, ऐसी कौन सी एनर्जी है, उस एनर्जी का क्या नाम है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो हमारा ये जीवन चल रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है, बहुत बड़ा पावर काम कर रहा है, उसका नाम है वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी, अगर वाइटल एनर्जी हमारी बॉडी में नहीं होती है, तो आप देखिए इंसान का जीवन चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चल तो सकता है थोड़ी वाइटल एनर्जी से भी, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि व्यक्ति जब उदास हो जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, या व्यक्ति दुखी होता है, व्यक्ति अशांत होता है, या स्ट्रेस में होता है, या तनाव में होता है, इट मीन्स कि उसकी वाइटल एनर्जी की कमी हो गई है, उसकी वजह से वो इस प्रकार की क्रियाएं करता है। तो आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ कि हमारी जो वाइटल एनर्जी है वो बॉडी में कहाँ पर है, और वाइटल एनर्जी क्यों हमारी खर्च होती है, और उस वाइटल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हम अपनी वाइटल एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं कि जिससे हमारी वाइटल एनर्जी बढ़ेगी तो हम हैप्पी रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, हम हैप्पी रहेंगे, और हमेशा हम हार्मोनियस रहेंगे। तो उसकी मैं चर्चा आज आपके सामने करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि एक इंसान सोया हुआ है, अब उसे जगाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इंसान सोया हुआ है, उसे जगाना है, उसके लिए आप क्या करेंगे कीर्ति भाई?
हिलाएंगे।
और बोलो, आवाज देंगे। वेरी गुड। पानी छिड़केंगे और ठंडा पानी, गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी, वो भी सही है। देखो एक इंसान सोया हुआ है, उसको जगाना है तो सबसे पहले आपको करना होगा कि वो इंसान कहाँ सोया हुआ है, किस रूम में सोया हुआ है, ठीक है ना। उस रूम का ज्ञान होना आपको जरूरी है। जब उस रूम का आपको ज्ञान हो जाएगा कि वहां इंसान सोया हुआ है, और फिर आप वहां जाएंगे, उसे जगाएंगे, वो जग जाएगा। भले पानी से जगाओ, हाथ से जगाओ, आवाज से जगाओ, डजंट मैटर, लेकिन सबसे पहले आपको वो ज्ञान होना जरूरी है कि वो इंसान सोया हुआ कहाँ है। जब तक ये पता नहीं होगा आप उसको जगा नहीं सकते। ठीक ये स्थिति हमारी बॉडी की है। हमारी बॉडी में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, बहुत सारे प्रकोष्ठ बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, लेकिन जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि हमारे शरीर में वो कौन सा रूम है जहाँ वो पावर हाउस है, जहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ वो वाइटल एनर्जी है, जब इसका ज्ञान हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, उसको जगाएंगे। तो सबसे पहले हमें सम्यक ज्ञान करना जरूरी है, सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। आप देखिए बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन ज्ञान में भी कैसा, सम्यक ज्ञान में आप ध्यान रखना, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ ना, सम्यक ज्ञान। नॉलेज तो आपके पास बहुत है, दुनिया भर का नॉलेज है, इतने इन्फॉर्मेशन आपके पास है, क्यों कि आप इंटरनेट से उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहते हैं। तो वो तो क्या है, वो किस नॉलेज हुआ, वो इंटरनेट का ज्ञान हुआ, लेकिन सम्यक ज्ञान कितने लोगों के पास है वो मुझे पता नहीं। एक महिला थी, उस महिला ने प्रवचन सुना और प्रवचन में संतों ने कहा कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, सब जगह फैला हुआ है, परमात्मा ईश्वर भगवान सर्वव्यापी है। महिला ने सुन लिया, उसने इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, ज्ञान तो उसने कर लिया, घर आई और घर आकर के स्नान करने लगी। तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन वो कपड़े पहन करके स्नान कर रही थी, तो घर वालों ने कहा, दो दिन देखा, चार दिन देखा, छह दिन देखा, फिर कहा कि ये क्या कर रही है। एक ने पूछ लिया कि तुम ये कपड़े पहन करके स्नान कर रही हो, तो उसने कहा कि पता नहीं, उसने संतों ने कहा था ना परमात्मा सर्वव्यापक है, हम सबको परमात्मा देखता है, तो हम परमात्मा के सामने कपड़े कैसे खोले, इसलिए मैं कपड़े पहन के थी। अब ज्ञान तो था उसको, लेकिन क्या सम्यक ज्ञान नहीं, सही ज्ञान नहीं। तो जब तक सही ज्ञान नहीं होगा हम अपने भीतर की वाइटल एनर्जी को क्या कर सकते, बूस्ट नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये ज्ञान दूंगी कि वो वाइटल एनर्जी आखिर है कहाँ, आपकी बॉडी में है कहाँ, और फिर आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते, उस फाउंटेन को आप कैसे खोलेंगे, वो आज प्रक्रिया मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप घर बैठ करके आप अपनी वाइटल एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, वाइटल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं और आप पावरफुल बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हर इंसान पावरफुल बनना चाहता है। तो ये तो मैंने बताया कि इसको पूरा लेडी को, महिला को ज्ञान नहीं था, लेकिन एक इंसान की जब अंतर्दृष्टि जाग जाती है तो आप देखिए उसकी चेतना कैसे चेंज हो जाती है। एक बार आचार्य ने अपने तीन शिष्यों को बुलाया और तीनों शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए, तीनों को एक एक कबूतर दिया और कबूतर देकर के कहा कि जाओ तुम तीनों मेरे शिष्य, इस कबूतर को, इस कबूतर की गर्दन को तोड़ करके मुझे गर्दन ला करके दे दो। अब आचार्य ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया, शिष्य तीनों कबूतर लेकर के, एक एक कबूतर लेकर के तीनों शिष्य चले गए। लेकिन आचार्य ने कहा कि एक बात का ध्यान रखना, उस कबूतर को उसकी गर्दन उस स्थान पर काटनी जहां कोई देखे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अब गए और जाकर के एक शिष्य जो पहला शिष्य था वो गया, जाकर जंगल में देखा कि यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई बर्ड भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसने गर्दन को काट दी कबूतर की और आचार्य के पास आ गया। दूसरा शिष्य भी गया, घूमता रहा घूमता रहा, घूमते घूमते उसने देखा कि अच्छा ये स्थान बड़ा सेफ स्थान है, यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां गया और कबूतर की गर्दन को काट करके और आचार्य के पास आ गया। तीसरा जो शिष्य था वो घूम रहा है, फिर रहा है, देख रहा है, जगह जगह भटक रहा है, लेकिन उसे कोई ऐसा सेफ स्थान नहीं दिखाई दिया कि जहाँ आचार्य ने कहा था ना कि कोई नहीं देखे वहां इस कबूतर को कबूतर की गर्दन को मरोड़ना है या काटना है। तो उस शिष्य ने जैसे कबूतर को हाथ में पकड़ा और देखा कि यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, फिर देखा कि अरे परमात्मा तो सब जगह देखता है, परमात्मा तो सबको देखता है, तो मेरे पास तो ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं मिला कि जहां मैं इस कबूतर को काट सकूं। शिष्य वापस कबूतर को लेकर के आचार्य के पास आ गया। जैसे ही आया आचार्य ने तीनों शिष्यों को देखा तो उस तीसरे शिष्य को पूछा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने कहा था ना कि मुझे कबूतर की गर्दन चाहिए, लेकिन तुम तो पूरा कबूतर लेकर के आए हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने मुझे कहा था कि ऐसे स्थान पर इसको मारना है, ऐसे स्थान पर इसकी गर्दन को मरोड़ना है कि जहां कोई नहीं दिखाई दे, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई दिया कि जहां मैं ये कह सकता हूं कि ये सेफ स्थान है। इसलिए मुझे ऐसा सब जगह ये परमात्मा तो मुझे देख रहा था, इसलिए मैं गर्दन को वापस इस कबूतर को लेकर के आ गया। शिष्य आचार्य ने कहा कि वास्तव में इस शिष्य की अंतर्दृष्टि जागृत है, ये जानता है, इसके पास सम्यक नॉलेज है, इसके पास केवल बुकिस नॉलेज नहीं है, ये अपने भीतर की शक्तियों को प्रकट कर सकता है, क्योंकि ये जानता है कि सब लिविंग बींग की आत्मा समान है, परमात्मा सबको देखता है। तो पहली बात तो इसने इसको इसमें एक जीवन पर एक आत्मा देकर के इसको मारा नहीं। दूसरी बात, इसने परमात्मा के स्वरूप को समझा है कि परमात्मा सब जगह देखता है, अगर हम कोई गलत काम करेंगे अच्छा काम करेंगे परमात्मा उसका हिसाब किताब रखने वाला है, वो हमको देखता है, उसी के अनुसार फिर हमको दंड भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि जिस इंसान को ये सब में ज्ञान हो जाता है, जिसकी अंतर्दृष्टि जाग जाती है, उस इंसान के पास सब कुछ मिल जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है, और उसकी फिर वाइटल एनर्जी बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो साधना में जल्दी जा सकता है। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आखिर जो हम आंखों से देखते हैं ना, तो उसमें जो पावर काम कर रही है उस पावर का क्या नाम है। जैन धर्म में ऐसे 10 पावर के नाम बताए हैं, 10 प्राण के नाम बताए हैं। मुझे पता नहीं कि लोगों को उन पावर्स के नाम याद है, किसी को याद है 10 पावर्स के नाम, 10 प्राण के नाम? विमला जी को याद है, एक बार रुको, मीना बहन को याद है, और अच्छा इन दोनों को याद है, मीना बहन विमला जी को दोनों को पावर के नाम याद है, वैसे सुने हुए हैं काफी लोगों के सुने, अभी मैं बोलूंगी ना तो आप सब कहेंगे कि हाँ ये नाम तो हमको भी याद है। 10 पावर्स हमारी बॉडी में है, जो हम आंखों से देखते हैं उस पावर का नाम है चक्षुरिंद्रिय पावर, चक्षुरिंद्रिय प्राण। कानों से जो सुनते हैं उस प्राण का नाम, उस वाइटल एनर्जी का नाम है श्रोतेन्द्रिय प्राण। तो श्रोतेन्द्रिय प्राण, चक्षुरिंद्रिय प्राण, और जो हम नाक से सूंघते हैं उस प्राण का नाम है घ्राणेन्द्रिय प्राण, और जो हम जीभ से चखते हैं टेस्ट करते हैं उस पावर का नाम क्या है, रसनेन्द्रिय प्राण, और जो हम टच करते हैं, आप देखिए हम किसी को टच करते हैं उसमें भी शक्ति चाहिए, बिना शक्ति के आप किसी को टच नहीं कर सकते हैं। आप देखिए आपको एक कार्टन लिफ्ट करना है, या आपको चेयर यहाँ से वहां मूव करनी है, या आपको कोई ऊपर से नीचे सामान रखना है, उसमें भी पावर की जरूरत होती है, तो वो है स्पर्शेंद्रिय पावर, स्पर्शेंद्रिय। तो 5 पावर के नाम याद हो गए, श्रोतेन्द्रिय प्राण, चक्षुरेन्द्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण और स्पर्शेन्द्रिय प्राण, 5 प्राण। एक प्राण है मनोबल प्राण, मनोबल, आप जितना भी चिंतन मनन कल्पना इमेजिनेशन और पास्ट की जो मेमोरी करते हैं उसमें भी एक पावर की जरूरत होती है, और वो पावर है मनोबल प्राण, मनोबल प्राण। मनोबल प्राण से हमको वो एनर्जी मिलती है कि उससे हम सोच सकते हैं, उससे हम चिंतन कर सकते हैं, उससे हम मेमोरी कर सकते हैं, उससे हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया मनोबल प्राण, और फिर वचन बल प्राण। वचन बल प्राण क्या है, आप जो बोलते हैं, आप देखिए बोलने में कितनी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है ना, तो वो है वचन बल प्राण, मनोबल वचन बल, और एक है काय बल प्राण। काया से, शरीर से जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, हाथों को ऊपर करते हैं, हाथों को हिलाते हैं, पैरों को हिलाते हैं, ये सब जो भी एक्टिविटीज होती है वो सब काय बल प्राण, और एक है श्वासोश्वास प्राण, जो हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, लेते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, श्वासोश्वास प्राण, और जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, हमारी पूरी लाइफ टिकी हुई है, उसको हम कहते हैं आयुष्य प्राण। तो ये 10 प्राण हमारे जैन धर्म में बताए गए हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ को आप उठा करके देखेंगे सभी धर्मों में प्राण की चर्चा मिलती है, वाइटल एनर्जी की चर्चा मिलती है। तो ये 10 प्राण, इसी 10 प्राण से हम दुनिया भर की जितने भी एक्टिविटीज हैं वो करते हैं। आप आखिर क्या करते हैं पूरे सुबह से लेकर शाम तक, क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज करते हैं, आंखों से ज्यादा देखते हैं, कानों से ज्यादा सुनते हैं, या कोई अच्छी बुरी स्मेल लेते हैं, या आप चिंतन करते हैं, या आप पास्ट की मेमोरी करते हैं, या आप अपने घर का काम करते हैं, इस शरीर को, शरीर का मूवमेंट, मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट करते हैं, ये करते हैं ना, तो दिन भर ये आपका चलता रहता है, सुबह से शाम तक आपका ये चलता रहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि सुबह से शाम तक अपनी बॉडी को बिल्कुल स्थिर करके रिलैक्सेशन की मुद्रा में 24 आवर्स तक नहीं बैठता है। और अगर कोई इंसान 24 आवर्स तक एक दिन के लिए अगर स्थिर होकर के रिलैक्सेशन की पोजिशन में या मेडिटेशन की पोजिशन में पूरे 24 आवर्स तक चला जाए, तो आप देखिए उसकी वो इतना वाइटल एनर्जी से मतलब सराबोर हो जाता है कि इतने उसके पास वाइटल एनर्जी आ जाती है कि फिर वो किसी भी कीमत में कभी भी दुखी नहीं होगा, कभी अशांत नहीं होगा। उसके सामने फेवरेबल सिचुएशन आए, अनफेवरेबल सिचुएशन आए, कुछ भी उसके जीवन में घटना घटित हो जाए, लेकिन वो उस वाइटल एनर्जी से भरा पूरा रहेगा, फिर उसे किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। तो ये जो 10 प्राण हमारे जैन धर्म में बताए गए हैं, इन 10 प्राणों का हम एवरीडे यूज करते हैं, एवरीडे हम यूज करते हैं। और आप देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी अनावश्यक हम अपनी वाइटल एनर्जी को कितना मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज का मतलब है कि अनावश्यक हमारी वाइटल एनर्जी पूरे दिन में कितनी ज्यादा खर्च होती है, कितनी ज्यादा खर्च होती है। आपको पता है आचार्य महाप्रभु जी कहते हैं कि आप एक अंगुली भी हिलाते हैं ना, कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने अंगुली को हिलाते रहते हैं, कई लोग घुटने को हिलाते रहते हैं, कई लोग कंधों को हिलाते रहते हैं, कई लोग अपने सिर को हिलाते रहते हैं, होता है ना। क्योंकि इंसान कोई ना कोई एक्टिविटीज वो करता ही है, उसको ये बिल्कुल चुपचाप ऐसे बैठे रहना, एकदम स्टेच्यू की भांति एकदम मूर्तिवत बैठे रहना, उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बड़ी साधना है। बैठ भी नहीं सकता, हमको इंसान नहीं बैठ सकता, उसके लिए हमको बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है, तभी इंसान वो स्थिरता से बैठ सकता है। लेकिन हम दिन भर अपनी कितनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, एक आप अंगुली को हिलाते हैं उसमें आचार्य महाप्रभु जी कहते हैं कि उसमें आपकी मन की एनर्जी वेस्ट होती है, आपकी बुद्धि की एनर्जी वेस्ट होती है, आपकी सोल की आत्मा की एनर्जी उसमें वेस्ट होती है, प्लस पूरे शरीर की एनर्जी एक अंगुली को हिलाने में वेस्ट होती है। तो आप देखिए, सिर्फ मैंने तो ये एक काम बताया है कि एक अंगुली को हिलाने में आप इतने अपनी वाइटल एनर्जी को वेस्ट करते हैं, तो पूरे दिन में तो न जाने आप कितना कितना काम कर रहे हैं, कितना कितना कितनी कितनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसमें आपकी कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि एनर्जी वेस्ट तो होगी, क्योंकि हमें ये शरीर मिला है। अब आप कहेंगे कि भाई ये शरीर मिला है तो कुछ करेंगे, ऐसे निर्धन होकर के थोड़ी बैठ रहेंगे, दिन भर थोड़ी ध्यान करेंगे, और ध्यान करने से हमारा पेट थोड़ी भर जाएगा, हमारी फैमिली को कौन रन करेगा। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप कुछ काम न करें, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो वाइटल एनर्जी आप पूरे दिन में वेस्ट कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, उस वाइटल एनर्जी को वापस आप गेन भी करें। तो गेन करने की मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से जो आपकी वाइटल एनर्जी दिन भर वेस्ट होती है उसको आप कैसे रीगेन कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को पुनः चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपका सेलफोन जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको आप चार्जर लगाते हैं ना, तो उससे वापस वो रिचार्ज हो जाता है, हर चीज आपकी रिचार्ज हो जाती है। लेकिन इसी प्रकार हमें अपनी वाइटल एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी वाइटल एनर्जी जो इतने इतने कामों में वेस्ट हो रही है, कितने कामों में वेस्ट हो रही है। आप देखिए, सबसे ज्यादा जो वाइटल एनर्जी हमारी वेस्ट होती है वो अननेसेसरी थिंकिंग में, अननेसेसरी थिंकिंग। लोग अननेसेसरी बहुत सोचते रहते हैं, इतना सोचते हैं कि जिससे कोई टाइम कुछ नहीं। अरे उसमें तो आप कम से कम अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, अननेसेसरी मत सोचो, नेसेसरी सोचना जरूरी है। आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, आप प्लानिंग करेंगे, उसमें आप चिंतन करेंगे, आपको अपना घर चलाना है, आप सोसाइटी में आते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं, ये जरूरी है, जो आवश्यक है वो करो। लेकिन कभी कभी इंसान अननेसेसरी भी ऐसी ऐसी प्लानिंग कर देता है। कैसे, एक बार एक व्यक्ति ट्रेवलिंग कर रहा था, ट्रेन की यात्रा कर रहा था, वो ट्रेन में बैठा, जिस सीट पर बैठा हुआ था ना उसके पास एक दूसरा व्यक्ति भी बैठा हुआ था। तो आप जानते हैं ना, एक से जब दो हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बातें, सबसे पहले बातें शुरू करेंगे ना। तो बातें करेंगे तो कुछ बोलना पड़ेगा, तो बोलने में तो वाइटल एनर्जी तो लगेगी, लेकिन आप नेसेसरी कुछ टॉक करें, कुछ स्वाध्याय की बातें करें, कुछ अच्छी बात करें, तब तो अच्छी बात है। तो अब वो इंसान बैठा था, तो दूसरा उसका मित्र बैठा, उसने देखा कि चलो एक आदमी और आ गया, तो थोड़ी बात चालू करे, तो उसने पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसने बताया कि भाई मैं वॉशिंगटन डीसी जा रहा हूँ। वो तो इंडिया का था, लेकिन मैं अमेरिका की बात बता रही हूँ, वैसे इंडिया की है, ये किस्सा तो इंडिया का है। तो उसने कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो अच्छा कि जयपुर जा रहे हो तो आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम अमुकचंद है। अब नाम भी बता दिया और नाम के बाद में फिर बताया, फिर पूछा कि तुम क्या बिजनेस करते हो। तो ऐसी बात हुई तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो अभी तो तुमने पूछा है मुझे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम बिजनेस क्या करते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन देखो मैं तुम्हें एक बात सही सही मैं बता देता हूँ कि तुमने इतनी बातें मुझे पूछ ली लेकिन मुझे ये बात मत पूछना कि तुमने शादी कब की, तुम्हारी वाइफ कहाँ है, तुम्हारे बच्चे कहाँ है, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, और तुम्हें पता है कि मेरी लड़की है और तुम्हारे लड़का है, तो मुझे ये मत कह देना कि मेरे लड़के की शादी मैं तुम्हारी लड़की से करना चाहता हूँ। मैं हरगिज तुम्हारे लड़के के साथ मेरी लड़की की शादी मैं हरगिज नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मुझे मत पूछना। अब आपको कितना अननेसेसरी इंसान सोचता जाता है ये पूछेगा वो पूछेगा, अरे इसने जो पूछे हैं उसके आंसर दे दो, क्लोज करो चैप्टर को। लेकिन अननेसेसरी इंसान बहुत सोचता है और अननेसेसरी सोचने में हमारी जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और ब्रेन के न्यूरॉन्स जब ज्यादा आपकी सोचने में एक्टिव हो जाएंगे तो आपकी जो वाइटल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा खर्च होगी। तो हम ज्यादा अनावश्यक अपनी एनर्जी को, वाइटल एनर्जी को खर्च किसमें कर रहे हैं? एक तो ज्यादा सोचने में, एक पास्ट की बातों को याद करने में हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। दूसरी बात है, एनर्जी वेस्ट होने का एक दूसरा कारण है फूड। आप देखिए फूड से भी एनर्जी वेस्ट होती है। कैसे? अगर आप स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं और बासी फूड खाते हैं तो इससे क्या है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा पावर की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत होती है, उसमें वाइटल एनर्जी ज्यादा डाइजेस्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में वाइटल एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जंक फूड ज्यादा नहीं खाएं, हम स्पाइसी फूड ज्यादा नहीं खाएं, हम ज्यादा बासी फूड नहीं खाएं कि जिससे उस फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी वाइटल एनर्जी ज्यादा खर्च हो। समझ में आया? तो वाइटल एनर्जी खर्च होने का दूसरा कारण है हमारा फूड। पहला कारण है अननेसेसरी सोचना, अननेसेसरी याद करना। और तीसरा जो वाइटल एनर्जी खर्च होने का जो तीसरा कारण है वो कौन सा है? क्या? एंगर। एंगर, हाँ वो इमोशंस भी है, इमोशंस भी ठीक है, लेकिन तीसरा कारण मैं आपको वाइटल एनर्जी खर्च कराने का बताऊंगी, वो है हमारी नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी में एंगर आ गया ना, अगर इंसान ज्यादा गुस्सा करता है या ज्यादा वरी करता है, एंजाइटी करता है, स्ट्रेस में रहता है, जेलसी करता है, तो इससे भी हमारी वाइटल एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है। तो हम ज्यादा नेगेटिविटी में नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि हम पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा रहे। और एक जो है हमारी वाइटल एनर्जी खर्च करने का एक जो कारण है ये बिजी लाइफ। हम दिन भर काम करते जाते। तो आप देखिए दिन भर आप काम करेंगे, दिन भर आप सोचेंगे, दिन भर ये करेंगे, तो इससे भी आपकी वाइटल एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। तो इसलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये वाइटल एनर्जी जो हमारी अननेसेसरी जो खर्च हो रही है उसको हम बढ़ाएं कैसे, ऐसे कौन से तरीके हैं कि जिससे हमारी खर्च तो होती है, अब उसको तो क्या है हम बोलना भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बोलना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, है बोलना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, आंखों से देखना भी पड़ेगा, कानों से सुनना भी पड़ेगा। इच्छा भी होती है कि हम कानों से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुने, कभी कभी इच्छा होती है कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको भी सुने, होती है ना इंसान की इच्छा। आई थिंक मैं बहुत बार मैं सोचती हूँ कि लोग धर्म चर्चा सुनने में इतने दिलचस्पी लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है उस समय तो उसके कान इतने खड़े कर लेते हैं, अरे इसमें क्यों यहाँ खड़े हो, क्यों क्रिटिसाइज को सुन रहे हो, अच्छी कोई धर्म की चर्चा जहाँ हो रही है वहां सुनो ना, इस क्रिटिसाइज में तो कुछ नहीं है। अब तुम भी दो क्रिटिसाइज करोगे तो तुम्हारी वाइटल एनर्जी और ज्यादा खर्च हो जाएगी। तो सुनने में, देखने में, खाने में, बोलने में, सबसे ज्यादा बोलने में हमारी वाइटल एनर्जी खर्च होती है। तो इन सारी चीजों में हमारी जो वाइटल एनर्जी खर्च होती है उसको हम कैसे बूस्ट करें, कैसे बढ़ाएं? लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना है कि आखिर वो वाइटल एनर्जी का सोर्स है कहाँ, जहां से हम उस एनर्जी को बूस्ट करेंगे। तो आपको पता है हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहां पर हमारी वो वाइटल एनर्जी है? शक्ति केंद्र। और कहाँ है वाइटल एनर्जी? ब्रेन में। अंजू जी कह रहे हैं ब्रेन में
स्पाइनल कॉर्ड के पीछे।
क्या दिनेश भाई क्या कह रहे हैं? ब्रेन में। वाइटल एनर्जी ब्रेन में,
स्पाइनल कॉर्ड में।
स्पाइनल कॉर्ड में,
स्पाइनल कॉर्ड के नीचे।
वेरी गुड। देखो हमारी जो ये वाइटल एनर्जी है ना, हमारी बॉडी में तेजस शरीर में है, और वो तेजस शरीर कहाँ है, जो ये एब्डोमेन का जो एरिया है जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो एनस का स्थान है, वहां पर हमारी एनर्जी का स्टोर है, वहां हमारे पास तेजस शरीर है। तेजस शरीर आप जानते हैं ना, देखो जो एक आपको ये शरीर मिला है ये तो औदारी शरीर है, और एक शरीर होता है तेजस शरीर, उसका ऐसा शेप नहीं होता है, लेकिन उसको हम कहते हैं एनर्जी हाउस, पावर हाउस जिसको कहते हैं। तो वो हमारा जो पावर हाउस है वो एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहां हमारी पूरी वाइटल एनर्जी का स्टोर वहां है, वहां भरी पड़ी है। इतनी ज्यादा वाइटल एनर्जी है कि आप जो एवरीडे ये काम करते हैं, चिंतन मनन मंथन, इसमें जो आपको सब, आप देखिए शरीर के एक एक सेल को काम करने के लिए वाइटल एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो वाइटल एनर्जी आपको उस स्टोर से, उस एनर्जी हाउस से वो एनर्जी आपको मिलती है, और वो हमारा हाउस है एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और एनस का जो स्थान है वहां पर पूरी हमारी एनर्जी संग्रहित है, पूरी वहां एनर्जी भरी पड़ी है वहां का स्थान। और एक जो है स्थान वो है किडनी, किडनी में भी हमारी वाइटल एनर्जी बहुत है, और जो ये लेवल का स्थान है जिसको हम कहते हैं तेजस के अंदर, जो ये लेवल का बेली बटन का स्थान है, यहां पर भी हमारी वाइटल एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जो शक्ति केंद्र है, जो हमारा एनर्जी हाउस है, वहां से एनर्जी जनरेट होती हुई या लेवल में आती है, और फिर वो धीरे धीरे पूरे बॉडी में हमारी एनर्जी फैल जाती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि वाइटल एनर्जी कहाँ है, एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, शक्ति केंद्र में वो हमारी वाइटल एनर्जी है। एनर्जी का पूरा हाउस है जिसको हम कह सकते हैं पावर हाउस, पावर हाउस बोलते हैं ना, तो उसका भी एक नाम है तेजस शरीर, तेजस बॉडी, लेकिन ऐसी बॉडी वो नहीं है, वहां पर वो सारी हमारी एनर्जी टिकी हुई है। अब हम उस एनर्जी को कैसे बूस्ट करें, उस एनर्जी को वहां कैसे ज्यादा हम उस एनर्जी को डिपॉजिट करते जाए, तो उसके लिए मैं आपको 6 साधन बताऊंगी, ध्यान से सुनना, 6 एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगी, वो 6 एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो आप अपनी वाइटल एनर्जी को बुलंद कर सकते हैं। कई कई लोग होते हैं ना जिनको स्पीच देना होता है, या जिनको अच्छा म्यूजिक गाना होता है, या जिनको अच्छा योगा करवाना होता है, तो उनको क्या मेलोडियस वॉइस चाहिए, स्वीट वॉइस चाहिए, अच्छी आवाज चाहिए। तो अच्छी आवाज निकालने के लिए आपको अपनी वाइटल एनर्जी को इंक्रीज करना होगा, और जिस इंसान की वाइटल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है वो अच्छा बोलता है, अच्छा बिहेवियर करता है, अच्छा यू नो लोगों के साथ बड़े अच्छे ढंग से वो प्रस्तुत होता है। लेकिन जिसकी वाइटल एनर्जी कम हो जाती है, वाइटल एनर्जी से जो गिर जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना बड़े उदास रहते हैं, बड़े मुंह लटके हुए होते हैं, ऐसे बैठते हैं टेंशन में, वरी में, एंग्जाइटी, इट मींस कि उनकी ये वाइटल एनर्जी बॉडी से बहुत ज्यादा निकल गई है। तो हमें वाइटल एनर्जी को बढ़ाना है, तो वाइटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो कारण है, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है कौन सा, उपवास। उपवास करने से आपकी वाइटल एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तभी तो बहुत बार कहा जाता है ना कि जब इंसान उपवास करता है तो उसकी बॉडी में हीट पैदा होती है, वो हीट क्या है, वो एक स्पेशल प्रकार की वाइटल एनर्जी है। तो उपवास करने से हमारी वाइटल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है। प्राचीन काल में हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं, अब देखिए वो वन में रहते थे, जंगल में रहते थे ऋषि मुनि, और लंबे लंबे समय तक वो निराहार, वो कुछ भी आहार नहीं करते थे, लंबे समय तक पानी भी नहीं पीते थे। तो इस प्रकार का वो उपवास करके अपनी वाइटल एनर्जी को इंक्रीज करते, और फिर वो इतने ज्यादा वाइटल एनर्जी से भरे पूरे हो जाते, शक्ति संपन्न हो जाते, फिर वो नया काम करते, कोई नया ग्रंथ लिखते, या कोई नई प्लानिंग करते, या उनके दिमाग से नया कोई इन्वेस्टमेंट, कोई आविष्कार होता, तो उस आविष्कार के लिए क्या है, वाइटल एनर्जी की जरूरत होती है। तो उपवास एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन उपवास भी कैसा, निर्जल उपवास। हम उपवास में पानी पीते हैं ना, तो पानी पीने से जो उपवास करते हैं उसमें वाइटल एनर्जी इंक्रीज तो होती है लेकिन कम होती है। वही अगर आप 24 उपवास करते हैं, आप देखिए भगवान महावीर ने अपने जीवन में कभी उपवास नहीं किया। अब आप कहेंगे समय जी, एक तरफ तो लोग कहते हैं कि भगवान ने तो इतने इतने उपवास किए थे, आप कहते हैं भगवान ने कभी उपवास नहीं किया। बोलो भगवान ने उपवास किया था क्या, भगवान महावीर ने उपवास किया, किया हाँ, सबसे लीला है। कोई ऐसा बंदा है क्या आप कह सकता है कि नहीं किया, कोई आप मेरे सेंटेंस को समझे, उसकी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा भगवान ने कभी उपवास नहीं किया। इस सेंटेंस का अर्थ क्या है, वेरी गुड, अनुषा ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। भगवान ने कभी उपवास नहीं किया, मतलब भगवान ने बेले की तपस्या से कम तो कुछ किया ही नहीं। भगवान महावीर ने अपनी लाइफ में बेला तेला चोला पंचोला 6 महीने तक की तपस्या, आप देखिए उपवास तो उनके लिए सामान्य चीज थी, उनको उपवास करने की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने बेले से अपनी तपस्या शुरू की। बेला का मतलब 2 दिन उपवास है, 1 दिन का उपवास हम सामान्य लोग करते हैं, हम सामान्य लोग जो कि बेला तेला पंचोला और 15 की तपस्या मास खमन की तपस्या वर्षी तप नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उपवास करते हैं। लेकिन भगवान ने उपवास से बड़ी बड़ी तपस्या की, मतलब और भगवान महावीर का जो उपवास होता वो बेला तेला होता, वो कभी भी इसमें जल नहीं लेते, 24 उनका तप होता। तो 24 तप करने से, 24 तपस्या करने से हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी पैदा होती है, वाइटल एनर्जी ज्यादा पैदा होती है, और वो वाइटल एनर्जी ऐसी होती है कि उससे हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और हमेशा हम उस वाइटल एनर्जी से हैप्पी हेल्दी और जॉयफुल रहेंगे। तो उपवास एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन उपवास भी कैसा, निर्जल उपवास जिसमें पानी भी नहीं पीना। पहली बात कि एनर्जी को बूस्ट करने का पहला कारण है उपवास, और दूसरा जो कारण है वो क्या है, सूर्य की आताकना। सूर्य की आताकना आपने देखा होगा कि जो आपका सोलार सिस्टम है, सोलार सिस्टम में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो स्टार है वो है सूर्य, और प्राचीन काल में कहा जाता था कि हमें हमारे जो ऋषि महर्षि होते थे वो सूर्य की आताकना लेते थे। सूर्य की आताकना कैसे, आप सुबह सुबह सनराइज के टाइम आप सूरज के सामने खड़े हो जाइए, और उस समय जो आप सन की वो आताकना लेंगे, वो सूरज का जो ताप लेंगे, वो सूरज का ताप बड़ा पावरफुल होता है, वो आपकी वाइटल एनर्जी को इंक्रीज करता है, वाइटल एनर्जी को बढ़ाता है। अब प्रश्न है कि कौन से समय का वो सूर्य हमें लेना चाहिए। हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप सूर्य की आराधना करें तो सुबह सुबह जो 1 घंटे और 1.5 घंटे का सनराइज से लेकर 1.5 घंटे का जो टाइम होता है ना, वो उस समय अगर आप सूर्य की आराधना करेंगे, उस समय आप सन रेज लेंगे, उस समय आप सूर्य की रश्मियों को अपनी बॉडी में डालेंगे, तो आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों, कि साइंस में भी कहा जाता है कि सुबह सुबह का जो सन होता है विटामिन डी, सन में तो विटामिन डी होता है, तो उससे क्या आपको विटामिन डी भी मिल जाता है, और उससे आपकी ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है वो रिफ्रेश होते हैं, सारे एक्टिव होते हैं। और दूसरी बात है कि सन में इतनी बड़ी ताकत होती है कि सूर्य की रश्मियों में इतनी बड़ी ताकत होती है कि आपका रेसिस्टेंस पावर बढ़ता है, आपकी बॉडी में अगर कोई भी बीमारी आ गई तो वो बीमारी के साथ फाइट करने की कैपेसिटी सन रेज में होती है। तो आप देखिए सूर्य की आराधना बहुत महत्वपूर्ण होती है, और अगर आपको कुंडलिनी जागृत करनी है, कुंडलिनी को जगाना है, या आप अपने तेजो लब्धि को प्राप्त करना है, तेजो लेशिया को जगाना है, तो उसके लिए ये सन की जो सन रेज है, सूर्य की जो आराधना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण आराधना मानी जाती है। तो सूर्य की रेज को लेना सुबह सुबह 10 मिनट आप एवरीडे उस सन बात को ले, सन बात कहते हैं ना, सन बात के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, आप इंटरनेट पर जाकर के देखिए कि सन बात की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो एवरीडे आप ज्यादा से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो सुबह जैसे ही सनराइज होता है 10 मिनट तक आप सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, और इसमें आप इतने रिचार्ज हो जाएंगे कि पूरे दिन में आपने जितनी भी एनर्जी वेस्ट की है पावर, क्योंकि कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए पावर की जरूरत है, तो उसमें आपकी एनर्जी पूरे दिन में जितनी वेस्ट हुई है वो 10 मिनट के उस सनरेज से आपको पूरी दिन की वो एनर्जी मिल जाएगी। फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अब मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई है तो मैं कैसे वापस अपने आप को रिचार्ज करूं। केवल 10 मिनट का आप सनरेज करेंगे, सनरेज लेंगे, सूर्य का आतप लेंगे, सूर्य की आराधना करेंगे। हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि महर्षि होते थे वो सुबह सुबह 2-2 घंटे तक अपने पूरे कपड़ों को, मतलब खाली थोड़ा सा कपड़ा रखते थे और पूरे अपनी बॉडी को सन के सामने खड़े हो जाते थे। और वो कैसे करते थे सूर्य की आराधना, वो दोनों हाथों को ऊपर करके और अपने आंखों को, अपने पूरे फेस को सन के सामने रखते, 1 घंटे तक सूर्य की आराधना लेते, फिर पीछे हो जाते, अपने मुंह को पीछे करते और बैक के पीछे उस सन रेज को लेते, सन की आराधना लेते। तो इस प्रकार सन की आराधना करने से वो अपने आप को शक्तिशाली बनाते। और आप जानते हैं कि अगर आप सन रेज लेते हैं तो आपको खाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें इतनी एनर्जी होती है, सन रेज में सूर्य की किरणों में इतनी एनर्जी होती है कि आप घंटों तक भूखे भी रह सकते हैं, क्योंकि उससे आपको एक टॉनिक मिलेगी, आपको एक एनर्जी मिलेगी, और जो वो वाइटल एनर्जी है वो वाइटल एनर्जी आपके सारे कार्यों को संपादित करेगी। बड़े बड़े कार्य इस वाइटल एनर्जी से आप कर सकते हैं। तो दूसरा कारण क्या बताया, सूर्य की आराधना। और तीसरा जो कारण मैं आपको बता रही हूँ अपनी वाइटल एनर्जी को बूस्ट करने का, वो है चैंटिंग, मंत्रों की चैंटिंग। लेकिन कौन से मंत्र, अब आपके मन में प्रश्न आएगा, मंत्र। अब देखिए मंत्र साहब, आप कोई सा भी मंत्र लो, चाहे नवकार मंत्र लो, चाहे गायत्री मंत्र लो, चाहे और भी कोई भी किसी भी प्रकार का मंत्र लो, लेकिन आप जानते हैं जो ये मंत्र जितने भी बनते हैं ना, वो ऐसे सामान्य वर्ड नहीं होते, उनमें स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है शब्दों का, तभी वो मंत्र पावरफुल बनते हैं। एक बार आचार्य श्री महाप्रभु जी के पास एक व्यक्ति आया, वो बड़ा दुखी था, बड़ा अशांत था, बड़ा घबराया हुआ रहता, इतना वो डिप्रेशन में चला गया, और उसने कहा कि आचार्य जी मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि जिससे मैं डिप्रेशन से निकल जाऊं, क्योंकि मैं बड़ा अशांत रहता हूं, बड़ा दुखी रहता हूं, मेरे भीतर से सारी शक्ति चली गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी सारी चली गई है। तो आचार्य महाप्रभु जी ने कहा कि तुम्हारी बॉडी से सारी वाइटल एनर्जी चली गई है, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उससे तुम्हारी वाइटल एनर्जी बढ़ेगी। तो आचार्य महाप्रभु जी ने क्या मंत्र बताया, आप ध्यान से सुनना, और उस मंत्र की साधना आप अपने घर में करेंगे। आप कभी भी उदास हैं, अगर आप चिंतित हैं, आप एंग्जाइटी में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो उस मंत्र को 2-3 मिनट आप इस मंत्र का उच्चारण करें, चैंटिंग करें, आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे मेरी कितनी बॉडी में वाइटल एनर्जी बढ़ गई है, मुझे बड़ा शांति का अनुभव हो रहा है। तो वो मंत्र है कौन सा, ओम क्षौं क्षौं, ओम क्षौं क्षौं, ओम क्षौं क्षौं। क्षय, क्षय कौन सा होता है, जो अक्षय, अक्षय में क्षय आता है ना, अक्षय जिसको अपन बोलते हैं क्षमा, क्षमा वाला अक्षय। तो क्षौं, एक बार आप सब उच्चारण करेंगे मेरे साथ, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, हाँ बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके, और पूरी एनर्जी के साथ, एकदम पूरी ताकत के साथ करेंगे, एकदम लेथार्सिस होकर के नहीं, ओम शौम शौम ऐसे नहीं, पूरी पावर के साथ, शक्ति के साथ करेंगे। श्वास भरे, गहरा और लंबा श्वास ले, ओ करना है, पूरे पावर के साथ, ढीला ढाला नहीं करना है। अगर आप ढीला ढाला करेंगे तो तो आप जहां जहां ऑर्गेन पर हम हिट करना चाहते हैं, जहां से हम एनर्जी को मतलब बढ़ाना चाहते हैं, वो नहीं बढ़ेगी। इसलिए जब भी करो तो वहां उस ऑर्गेन पर आपका वो शब्द हिट होना चाहिए। तो राम कहाँ करना है, रीम कहाँ करना है, उसकी हम नेक्स्ट जो संडे का जो हमारा प्रवचन होगा ना, उसमें हम केवल चैंटिंग और मेडिटेशन करवाते हैं। उस चैंटिंग और मेडिटेशन से कैसे हम वाइटल एनर्जी को बूस्ट करें, उसका हम पूरा प्रैक्टिकल एक घंटा तक वही प्रयोग करवाते हैं। और एक ऑर्गेन पर ले जा करके हम उस एनर्जी को वो करते हैं, उस फाउंटेन को खोलते हैं। तो वो नेक्स्ट संडे को हम उसकी प्रैक्टिकल भी उसका करवाएंगे प्रयोग। तो जिसको रुचि है वो जरूर नेक्स्ट संडे को आए, ताकि वो प्रैक्टिकल प्रयोग भी करे, तो उसका पूरा एक कोर्स हो जाएगा। तो ये हो गया चैंटिंग। तो सबसे पहला मैंने बताया था उपवास, दूसरा मैंने बताया सूर्य आतापना, और तीसरा मैंने बताया चैंटिंग, और चौथा है आसन। आसन आसन से आप अपनी वाइटल एनर्जी को बूस्ट करते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कौन सा आसन, तो आसन में अगर आप ज्यादा आसन नहीं कर सकते तो एक सूर्य नमस्कार करें, एक सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से उस सूर्य नमस्कार को आप 5 बार करें, 9 बार करें या 11 बार, और ज्यादा टाइम है तो 11 बार करें, नहीं तो कम से कम स्टार्टिंग में 3 बार आप अवश्य करें। अब आप कहेंगे कि कैसे करें सूर्य नमस्कार, स्वतंत्र जी या अपने कीर्ति भाई को आकर के एक बार सूर्य नमस्कार करके
दिखाएंगे। तेरे को भेजा
नहीं,
सूर्य नमस्कार। हाँ, बहुत दिनों के बाद किया है, मैंने बहुत दिनों के बाद किया है, थोड़ी बॉडी में स्टिफनेस आ गई है। सीमा बहन यहाँ आगे करो, ये सीमा बहन डेली करती है। तो सूर्य नमस्कार, इस सूर्य नमस्कार को आप दिन में शुरू करो, 3 बार से शुरू करो, 3 बार करना, फिर धीरे धीरे 5 बार है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, भूल गए, एक भूल गए, पहली बार में भूल गए। नमस्कार को 3 बार करेंगे आप अपनी वाइटल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, इससे पूरे ऑर्गेन आपके काम है। लेकिन इस वाइटल एनर्जी कब बढ़ेगी, जब आप सांस के साथ करेंगे, पॉज के साथ करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे, उस एक्सरसाइज से तो क्या, मैंने पहले बताया था कि आप जितना भी शरीर को घुमाएंगे उससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन ये सूर्य नमस्कार जब आप ब्रीदिंग के साथ करेंगे, श्वास के साथ पॉज देकर के, श्वास को होल्ड करके, जिसको हम बोलते हैं योग के साथ जब आपका सूर्य नमस्कार होगा, तब आपकी वाइटल एनर्जी बढ़ेगी। तो उसकी भी पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, सीखने के लिए यहाँ आना पड़ेगा आपको, पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग ले लेना। तो चौथा कारण मैंने आसन बताया है, पांचवा है जो एनर्जी को बूस्ट करने का, पांचवा कारण है प्राणायाम। तो प्राणायाम में आपको सिर्फ मैं 2 ही प्राणायाम बताती हूँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करेंगे, राइट से इनहेल करना, लेफ्ट से एक्सहेल करना, फिर होल्ड करना, फिर लेफ्ट से इनहेल करना और राइट से एक्सहेल करना। इसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये प्राणायाम अगर आप एवरीडे 3 मिनट करते हैं, आपकी वाइटल एनर्जी बढ़ेगी, चेहरा चमकने लगेगा। झुर्रियां जो पड़ती है एक सर्टेन एज के बाद, तो आपकी बहुत लेट पड़ेगी। ये बॉडी का धर्म है, वो तो होगा तो होगा ही, लेकिन अगर आप ये सब चीजें करते रहेंगे तो उससे आपकी वाइटल एनर्जी बढ़ेगी, आप यंग रहेंगे, आप हेल्दी वेल्दी और जॉयफुल रहेंगे। तो इसके लिए आसन बता दिया, प्राणायाम बता दिया, अब लास्ट में एक चीज और है, वो कौन सी है, मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन भी करना जरूरी है। मेडिटेशन, आसन, प्राणायाम, चैंटिंग, सूर्य की आराधना, उपवास और एक लास्ट जो है वाइटल एनर्जी को बढ़ाने का कारण है, वो है संकल्प शक्ति। अगर व्यक्ति के भीतर में संकल्प शक्ति नहीं है, अगर व्यक्ति डरता रहता है, जब हमारे भीतर में वो एक विश्वास होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जाग जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे भीतर की अनंत शक्ति को मैं जगा सकता हूँ, इस प्रकार की जब आपके मन में एक फेथ, एक आस्था, एक निर्भयता, एक बोल्डनेस जब पैदा होगी, तब आप कुछ कर सकेंगे। तो सबसे जरूरी है कि हमारी संकल्प शक्ति मजबूत बने। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे भीतर में वो इन्फिनिट पावर है, वो जो शक्ति जो डॉर्मेंट है, सोई हुई है, उसे हमें जगाना है। हमारी बॉडी में ऐसा कमरा है, ऐसा रूम है, ऐसा प्रकोष्ठ है कि वहां हमारी वो शक्ति सोई हुई है, उस शक्ति को हमें जगाना है। और जगाने के लिए सबसे पहले आपको निर्भय बनना होगा। कैसे निर्भय? कैसा? सुकरात को जब जहर का प्याला पिलाया गया, एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा कि अरे कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है, सुकरात को जहर का प्याला पिलाया जा रहा है। और वो आकर के सुकरात के सामने खड़ा हुआ, आंखों में आंसू टपकने लगे और रोने लगा कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, आप निर्दोष को मारा जा रहा है। तो सुकरात ने क्या कहा? सुकरात ने कहा कि इसका मतलब है तुम ये चाहते हो कि मैं दोषी बनकर के मारा जाऊं? उसने कहा ना कि आप निर्दोष को मारा जा रहा है। तो सुकरात ने क्या कहा? सुकरात ने कहा कि इसका मतलब तुम्हारा इंटेंशन ये है कि मैं दोषी बनकर के मारा जाऊं? तुम क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? मेरी आत्मा अजर है, मेरी आत्मा नहीं मर रही है, इस बॉडी को मारा जा रहा है, इस बॉडी को जहर से समाप्त किया जा रहा है, लेकिन तुम घबराओ मत। ऐसा कौन कह सकता है? वही इंसान जिसकी वाटल एनर्जी बहुत ज्यादा, जिसको अपनी शक्ति पर विश्वास है, जिसको अपनी एनर्जी पर विश्वास है, जिसको अपनी असीम पावर पर एक आस्था है, श्रद्धा है, वही व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है कि डरने की जरूरत नहीं है। निर्भय बनो, अभय बनो, अभय बनकर के, निर्भय बनकर के आप जो चाहे वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल हो सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक दिन बैठे हुए थे और वो कुछ लिख रहे थे, तो लिखते लिखते अचानक एक ऐसा बदमाश व्यक्ति आया, हाथ में छुरा लेकर के आ गया और आकर के सामने खड़ा हो गया। अब रविन्द्रनाथ टैगोर तो लिख रहे थे, लिखते लिखते उन्होंने देखा तो पूछा कि भैया तुम क्यों आए हो? उसने कहा कि मैं मारने के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम मारने के लिए आया हो, थोड़ी देर ठहर जाओ, मेरा ये लेटर पूरा हो जाए, मुझे बहुत आवश्यक काम है, ये मुझे अर्जेंट लेटर लिखना है, जब ये मेरा लेटर लिखने का काम पूरा हो जाए फिर तुमको जो करना है, मारना है, जो करना है तुम आराम से कर लेना। वो इंसान छुरा लेकर के हाथ में खड़ा है, रविन्द्रनाथ टैगोर आराम से लेटर को लिखते जा रहे, कोई वरी नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं तो इंसान का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। कोई चोर आता है, आता है घर में, गुस्सा है, तो कितना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, यू नो होता है ना, व्यक्ति भयभीत हो जाता है, डरने लग जाता है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर डरे नहीं, पूरा लेटर लिख लिया और लेटर लिखने के बाद कि जाइए अब मेरा काम फिनिश हो गया है, मुझे जो करना था मेरा नेसेसरी वर्क हो गया, अब तुम्हें जो करना है वो कर लो। उस इंसान ने देखा कि अरे ये तो जीना जानता है, कितना निर्भय है, कितना बोल है, इसको मृत्यु का कोई भय नहीं। वो रविन्द्रनाथ टैगोर के चरणों में गिर गया, माफी मांगने लगा कि मुझे आज पता चला कि जो इंसान जीना जानता है उसको कोई इंसान मार नहीं सकता, उसको कोई छुरे से उसको छुरा भोंक नहीं सकता उसको। तो उसने वो उसका भक्त बन गया। तो आप देखिए हम सब निर्भय बने, अनंत शक्ति हमारे भीतर में है, यही दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म को केवल बेचैनी में केवल मुंह लटका करके बैठना, हाय मेरा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ये करना है, ये सब तो दुखते रहेंगे, शरीर के धर्म है, लेकिन हम अपने वाइटल एनर्जी को कैसे बढ़ाए उसके बारे में चिंतन करना है। मन में एक आस्था पैदा करो, मन में एक श्रद्धा पैदा करो, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, निर्भय बन सकते हैं। तो मैंने ये जो छह जो कारण आपको बताए हैं कि हम इस छह कारणों से अपनी वाइटल एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको आधा घंटे का एक पैकेज देती हूँ कि वाइटल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आधा घंटे का पैकेज, उसमें आधे घंटे में आपको क्या करना है एवरीडे, उस आधे घंटे को मेरे बताए अनुसार आप करोगे तो आप अपनी एनर्जी को एवरीडे बूस्ट अच्छी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 मिनट तक आसन सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार के साथ साथ आपको दूसरे आसन भी आते हैं, अगर भुजंगासन आता है, सर्वासन आता है, हलासन आता है, सर्वांगासन आता है, तो उन आसनों को भी आप कर सकते हैं। 5 मिनट एवरीडे आसन, 5 मिनट आप एवरीडे प्राणायाम, 5 मिनट चेंटिंग, 15 मिनट हो गया, 15 मिनट, 15 मिनट के बाद 10 मिनट एवरीडे सन रेज को लेना है, सन रेज एवरीडे सन के सामने खड़े होकर के सन रेज, आंखों को बंद करके सूर्य को सूर्य की रेज को लेना है, और 30 सेकंड के लिए सन गेज करना है, 30 सेकंड से ज्यादा मत करना, सन गेज, सन गेज में बड़ी पावर होती है, बड़ी शक्ति होती है, तो सूर्य को बिल्कुल खुली आंखों से 30 सेकंड तक देखना है, तो उससे आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी आपको शक्ति मिलेगी, आपको स्वयं को फील होगा कि आज मेरा पूरा दिन इतनी पूरी एनर्जी के साथ बीता, पूरे दिन में मुझे कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं आई, पूरा दिन मेरा कोई भी मेरे सामने परिस्थिति आई उसमें मैं बिल्कुल बैलेंस रहा। तो कितने 30 सेकंड के लिए, याद रखना 30 सेकंड कह रही हूँ, 30 मिनट नहीं कह रही हूँ, 30 सेकंड सन गेज करना और 10 सेकंड तक सूर्य की आराधना, सन रेज को लेना, 10 मिनट तो कितना 25 मिनट का कोर्स हो गया ना। अब 5 मिनट और करना है, वो क्या है, 5 मिनट
सवासन।
हाँ ये भी सही है, सवासन का मतलब है कि 5 मिनट तक आपको रिलैक्सेशन करना है, बॉडी को बिल्कुल स्थिर करें। आप एक भी मूवमेंट अपने शरीर की कोई एक्टिविटीज, कोई शरीर का मूवमेंट ना करें, और वो जो आप सवासन करेंगे, जो आप रिलैक्सेशन करेंगे, तो उससे आप बहुत सारी अपनी एनर्जी को गेन कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आपने सारा फंक्शन, सब कुछ एक्टिविटीज का, मूवमेंट को सब कुछ बंद कर दिया। तो ये आधे घंटे का पैकेज मैंने आपको दिया है, वो एवरीडे आप हाफ एन आवर इसकी साधना करेंगे, तो आप अपनी बॉडी में पूरे दिन में जितनी भी आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है वो एनर्जी आप वापस रिगेन कर सकते हैं। तो आप अभी जिस एज में चल रहे हैं, कम से कम एवरीडे शाम के समय में या सुबह के समय में आधा घंटा निकालिए, और आधे घंटे में मैंने जो जो चीजें आपको बताई है वो एवरीडे आप करें, तो ये गारंटी है कि आप हेल्दी, वेल्दी, जॉयफुल रहेंगे। जब तक जिएंगे आप मस्ती का जीवन जिएंगे, हैप्पीनेस का जीवन जिएंगे, और कभी आप किसी के परवश नहीं होंगे कि कोई बेटे आकर के मेरी सेवा करेंगे, बहू आकर के मेरी सेवा करेंगे। क्यों? कि जब आप बीमार होंगे ही नहीं, और बीमार होंगे नहीं तो ना आपको बेटे की सेवा की जरूरत है, ना बेटे की सेवा की जरूरत है, ना किसी को बाहर बुलाने की जरूरत है। आप दोनों अपने हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और बड़ा अच्छा आनंद का जीवन जिएंगे। तो इसलिए जब तक हम जिए, 100 वर्ष तक जिए, लेकिन हम हेल्दी जीवन जिए, हैप्पी जीवन जिए। तो ये मैंने आज आपको बताया। ओम।